फासीवाद का विकास प्रथम विश्व युद्ध का उद्देश्य विश्व में जनतंत्रवाद को सुरक्षित रखना था, किंतु विश्व युद्ध का यह उद्देश्य उद्देश्य बनकर ही रह गया और विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के विभिन्न देशों में अधिनायकवाद के जो अनेक रूप प्रकट हुए फासीवाद उनमें से एक था। फासीवाद का विकास प्रथम महायुद्ध के बाद इटली में हुआ था। इस महायुद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था और उसे आशा थी कि विजय से प्राप्त होने वाले लाभ में उसे अन्य मित्र राष्ट्रों के समान ही भाग प्राप्त होगा। इटली की दृष्टि प्रमुख रूप से ऑस्ट्रियन समाज के कुछ भागों और अफ्रीका में अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर थी, किंतु वर्षाय की संधि में उसकी ये आशाएं पूरी नहीं हुई और मिस्र राष्ट्र मंडली में उसे उचित सम्मान भी नहीं मिला। इस कारण इटली की जनता तत्कालीन लोकतंत्रीय शासन से असंतुष्ट हो गई और नेतृत्व में परिवर्तन की मांग करने लगी। 1921 में इटली का टर्की से युद्ध होने के कारण इटली की आर्थिक स्थिति महायुद्ध आरंभ होने के पहले ही खराब थी। युद्ध के व्यय ने आर्थिक स्थिति को और अधिक बिगाड़ने का कार्य किया। तत्कालीन इटली की तथाकथित लोकतंत्रीय सरकार लगातार घाटे के बजट प्रस्तुत कर रही थी और देश आर्थिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा था। युद्ध बंद हो जाने के कारण युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए थे और युद्ध से लौटे हुए सैनिकों की भी यही स्थिति थी। आए दिन की हड़तालों के कारण उत्पादन भी बहुत कम हो गया था और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से साम्यवाद का भय बहुत बढ़ गया था। ऐसी सोचनीय परिस्थितियों में मुसोलिनी ने इटली के राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया। मुसोलिनी आरंभ से ही महायुद्ध में इटली के भाग लेने का विरोधी था और विश्व युद्ध में भाग लेने से उत्पन्न निराशा ने मुसोलिनी के सम्मान में वृद्धि कर दी थी। आरंभ में मुसोलिनी समाजवादी विचारधारा के संपर्क में आया और उसने फासिको डी कोम्बे डाइमेंटो नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था और इसने केवल पूंजीवाद और निरंकुश शासन के विरोध का ही मार्ग अपनाया। इसके अतिरिक्त सैनिक अनुशासन के ढंग पर एक स्वयंसेवक संघ भी गठित किया गया था, लेकिन इस संस्था की स्थापना के एक वर्ष बाद ही से ही मुसोलिनी ने यह अनुभव करने लगा कि इटली की जनता साम्यवाद से भयभीत है और इटली की जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साम्यवाद का स्पष्ट विरोध नितांत आवश्यक है। 1622 ईस्वी में मुसोलिनी के विचारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ और उसने उद्योगपतियों तथा जमींदारों का पक्ष ग्रहण करके खुले रूप से उग्र राष्ट्रवाद और हिंसा का प्रचार करना आरंभ किया। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए 1922 में मुसोलिनी ने कैथोलिक विरोधी और राजतंत्र विरोधी दृष्टिकोण का भी त्याग कर दिया। फासीवादियों ने सैनिक ढंग से संगठित होना आरंभ कर दिया और 26 अक्टूबर 1922 को फासीवादियों के जत्थे रोम पहुंचने लगे। यह एक तथ्य है कि इस समय तक सभी फासी दल की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी और फासीवादियों के जत्थे को आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन इटली के सम्राट ने फासी विरोधी आज्ञा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और 26 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को मिलीजुली नवीन सरकार बनाने का कार्य आमंत्रित किया गया। मुसोलिनी ने सभी वर्गों के सहयोग व समझौते की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन समय बीतने के साथ मुसोलिनी ने अपने वास्तविक प्रकट कर दी देश में संसदात्मक व्यवस्था को भंग कर दिया गया। फासी दल के अतिरिक्त अन्य दल को अवैध करार कर दिया गया और विरोधियों की हत्या तथा इस प्रकार के अन्य उपायों को से समाप्त कर दिया गया। 1926 में मुसोलिनी ने इटालियन संसद ड्यूस को भंग कर दिया और वह इटली का तानाशाह बन बैठा। इसी समय से इटली में मुसोलिनी की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई, जो जुलाई 1929 तक इटली की पराजय और फासी दल की सरकार के समाप्त होने तक बनी रही। 1934 में जर्मनी और इटली की पराजय के बाद इटली में फासी दल का अंत हो गया। फासी दल के प्रमुख सिद्धांत। फासीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला, फासीवाद एक क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। व्यक्तिवाद, आदर्शवाद या साम्यवाद की भांति फासीवाद एक क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। फासीवादियों के पास ना तो अपने कोई निश्चित सिद्धांत हैं और ना ही कोई निश्चित कार्यक्रम। वास्तव में वे सैद्धांतिक वाद विवादों की उलझन में पड़ना ही नहीं चाहते। फासीवाद सिद्धांत तथा निश्चित कार्यक्रम में विश्वास ही नहीं करता है। फासीवाद का आधार तो व्यवहार और वास्तविकता है। स्वयं मुसोलिनी के शब्दों में, हमारा कार्यक्रम सरल है, हम इटली पर शासन करना चाहते हैं। औपचारिक सिद्धांत लोहे और टीन की हथकड़ियां हैं। मेरा कार्यक्रम बात नहीं, काम है। फासीवाद इटली की राजनीति के बंजारे हैं, जो किन्हीं भी निश्चित सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं हैं। इटली की जनता के कल्याण को एकमात्र ध्येय मानकर वे शाश्वत गति से आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा, फासीवाद एक सर्वाधिकारवाद धारणा है। फासीवाद व्यक्ति और राज्य में राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका विचार है कि राज्य हित व्यक्तियों के हितों से अधिक है, महत्वपूर्ण है। फासीवाद राज्य को एक ऐसी सर्वाधिकारवाद और सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में देखना चाहते हैं, जिसकी एकमात्र पुकार व्यवस्था, अनुशासन तथा सत्ता है। और इन तीनों की प्राप्ति के लिए फासीवाद राज्यों द्वारा व्यक्तित्व स्वाधीनता का बलिदान किया जा सकता है। फासीवाद व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का एक ऐसा पुर्जा होता है, जिसका एकमात्र कर्तव्य राज्य के सम्मुख नतमस्तक होकर अपने प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखना है। यथार्थ में फासीवाद राज्य को एक ऐसी सर्वशक्तिशाली संस्था के रूप में देखता है कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष उसके कठोर और अनुशासन नियमों से मुक्त नहीं हो सकता। स्वयं मुसोलिनी अपने इस सर्वाधिकारवाद राज्य का चित्रण करते हुए कहता है, विश्व की कोई भी मानवीय अथवा आध्यात्मिक वस्तु राज्य के बाहर नहीं हो सकती, और यदि हो तो उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। सब कुछ राज्य के अंतर्गत है और राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तीसरा, उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास और शांति और अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध। फासीवाद तथा नाजीवाद दोनों ही राज्य तथा राष्ट्र को एक ही मानते थे और उनकी भाषा में राज्य का अर्थ राष्ट्र ही था। फासीवाद ऐसी उग्र राष्ट्रीयता का उपासक है, जो राष्ट्र और राज्य के आगे कुछ भी नहीं देख पाता। उनके अनुसार राज्य तथा राष्ट्र अंतिम सत्य है और स्वराष्ट्र का हित ही सर्वप्रिय तथा सर्वसाध्य होना चाहिए। स्वयं मुसोलिनी के शब्दों में, राज्य एक आध्यात्मिक एवं नैतिक संगठन है, ऐसा संगठन जिसका उद्भव और विकास परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। राष्ट्र के प्रति अपनी इस दृष्टिकोण के कारण फासीवाद शांति और अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार तो प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए, चाहे इसके लिए दूसरे राज्यों के हितों का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। मुसोलिनी कहता है कि जो लोग विश्व शांति की बात करते हैं वे कायर हैं, क्योंकि विश्व शांति कभी भी संभव ही नहीं। शांति तो एक ऐसे तालाब के समान है, जहाँ पानी ठहर कर गंदा हो जाता है। बिना युद्ध के कोई मनुष्य, जाति, समाज या राज्य उन्नत ही नहीं कर सकता। युद्ध नितांत स्वाभाविक और मानव जीवन की पुण्यता युद्ध में ही है। मुसोलिनी के शब्दों में, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का। हिटलर ने भी इसी संबंध में ऐसा ही कहा था, अविराम युद्धों से ही मानव जाति की उन्नति हुई है और सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति विनाश के ग्रत में चली जाएगी। निरकुशताना शाही शासन व्यवस्था की समर्थक विचारधारा का युद्ध प्रय होना स्वाभाविक है। मानो कार्लाव के अनुसार फासीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही इसका विकास संभव है। चौथा, प्रजातंत्र का विरोध और कुलीनतंत्र में विश्वास। फासीवादियों के अनुसार फ्रांस की क्रांति के पश्चात लोकतंत्रवाद आया, पर यह भी वास्तविक रूप से जनता के शासन की स्थापना न कर सका। उनके मतानुसार यद्यपि लोकतंत्र के आगमन से राज्य की शक्ति राजाओं और कुलीनों के हाथों में ना रही, किंतु वह जनता के हाथों में ना आकर कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के ही हाथों में केंद्रित हो गई, क्योंकि केवल मत देने के अधिकार से ही जनता को राज्य करने की शक्ति नहीं मिल जाती। इस कारण फासीवाद लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यवहारिक शासन व्यवस्था मानते हैं और उन सब बातों का विरोध करते हैं जो लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। फासीवाद लोकप्रिय संप्रभुता को एक मिथ्या धारणा मानता है, प्रजातंत्र की तुलना सबसे करता है, संसद को बातों की दुकान कहता है और बहुमत के शासन को उल्लूकों की व्यवस्था कहकर उसका उपहास उड़ाता है, और उसके अनुसार प्रजातंत्र में लोगों को भ्रम रहता है कि वे वास्तविक शासक हैं, परंतु यथार्थ में शासन शक्ति उन्हीं के हाथों में केंद्रित रहती है जो जनता को अपनी वाक्पटुता से बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मुसोलिनी के शब्दों में प्रजातंत्रीय शासन को व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि वह समय समय पर लोगों को जनता की संप्रभुता का झूठ झूठ आभास देती रहे, और जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य, गुप्त और अनुत्तरदायी हाथों में रहती है। फासीवाद का विचार है कि जनसाधारण अज्ञानी, अंधविश्वासी तथा भावुक होता है और उसके द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व नहीं किया जा सकता, लेकिन विशाल राष्ट्र में सदैव ही कुछ ऐसे योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल व्यक्ति हुआ करते हैं जो निश्चित आदर्शों से प्रेरणा लेकर निष्ठापूर्वक संपूर्ण राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं। इस प्रकार फासीवाद जन्मजात असमानता में विश्वास करते हुए प्रजातंत्र के मूल आधार को चुनौती देता है और कार्यकुशलता, योग्यता तथा अनुभव की आर लेकर कुलीन लोगों और संचालित निरकुशतानाशाही शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। पांचवा, फासीवाद तर्क और बुद्धि में विश्वास नहीं करता। फासीवाद व्यक्ति को स्वभाव से एक विवेकशील, तर्कपूर्ण तथा बुद्धिवादी प्राणी न मानकर एक भावात्मक और प्रवृत्तिवादी प्राणी मानता है। फासीवाद बुद्धिवादी दर्शन को विलासवादी धारणा मानता है और बुद्धि व तर्क के स्थान पर निर्णय और विश्वास में समर्थन करता है। मुसोलिनी ने इटली की जनता को राज्य का अंधा भक्त बनाए रखने के लिए दो नारे दिए थे, प्रथम मुसोलिनी सदैव सही होता है तथा द्वितीय यह कि उसके आदेशों में हमें विश्वास करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए तथा उनके लिए युद्ध तक को उद्यत रहना चाहिए। फासीवाद का विचार है कि अपने जीवन को पुण्यता सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ ऐसे आदर्शों के प्रति प्रतिष्ठावान होना पड़ता है जो साधारणतः तर्क की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। फासीवाद समाज विरोधी है। फासीवाद वर्ग संघर्ष या इतिहास की आर्थिक व्यवस्था की धारणा में विश्वास नहीं करता। ये इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि संपूर्ण जीवन आर्थिक कारणों से संचालित होता है। उनका विचार है कि धर्म, देशभक्ति, पवित्रता और वीर पूजा मानव जीवन के अधिक महत्वपूर्ण आदर्श हैं। फासीवाद समाजवाद को निरा भौतिकवादी दर्शन कहकर उसकी आलोचना करता है। मुसोलिनी के ही शब्दों में आर्थिक समृद्धि मनुष्यों को उन पशुओं के समान बना देगी जिन्हें केवल अपना पेट अच्छी तरह से भरने को ही चिंता रहती है, और इस प्रकार मनुष्य जाति का अस्तित्व केवल भौतिक ही हो जाएगा। इस प्रकार फासीवाद वर्ग संघर्ष की धारणा को अस्वीकार कर समाज के सभी वर्गों के सहयोग से राज्य की सर्वतोमुखी उन्नति का प्रयत्न करता है। उनका विचार है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और वर्ग संघर्ष की धारणा को प्राकृतिक है ना ही असंभवभावी। आठवां, फासीवाद धर्म विरोधी सिद्धांत नहीं। सन 1929 के पूर्व इटली का फासी दल धर्म और धार्मिक गिरजाघरों को समूल नष्ट करने के पक्ष में था, किंतु 1929 के में उसने यह अनुभव किया कि कैथोलिक चर्च का प्रभाव इटली की जनता पर इतना गहरा और प्रबल है कि उसे खत्म नहीं किया जा सकता, और अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए कैथोलिक धर्माधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रखना आवश्यक है। सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद तो अनेक प्रमुख नागरिकों को फासी दल का सदस्य बनाने के लिए उसने चर्च से संधि कर लेना ही उचित समझा। इसके फलस्वरूप उसने विक्टियन इटालियन अकॉर्ड नाम से एक संधि हुई, जिसके अनुसार पोप ने फासिस्ट सरकार को इटली की सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की तथा मुसोलिनी ने वेकिटन प्रदेश पर पोप की सत्ता को स्वीकार किया। संधि की अन्य शर्तों के अनुसार यह निश्चय किया गया कि पोप कैथोलिक पादरियों को इटली की राजनीति में भाग लेने से मना कर देगा और इटली के राजकीय स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जाती रहेगी। इस प्रकार धर्म के संबंध में फासीवादियों का अपना कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं था। अवसारवादियों होने के कारण उन्होंने धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयोग किया। वास्तव में चर्च उनके हाथ की कठपुतली मात्र था जो उनके पक्ष में प्रचार करता था। नौमा, फासीवाद साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। फासीवाद सर्वसत्तावादी विचारधारा है और सर्वसत्तावादी होने के कारण उसका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी है। उनका विचार है कि साम्राज्यवाद से राष्ट्र के नागरिकों की आत्माएं उन्नत होती हैं और साम्राज्यवाद संपन्न राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि एक अर्ध विकसित राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने में सफल हो जाए तो बड़े राष्ट्रों को यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वे इन साधनों से स्वयं लाभ उठाएं। उनका विचार है कि बिना साम्राज्यवाद के इटली की उन्नति नहीं हो सकती। स्वयं मुसोलिनी के शब्दों में साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील नियम है। इटली का विकास जीवन मरण का प्रश्न है। इटली का या तो प्रसाद होना चाहिए या उसे मर ही जाना चाहिए। नौवां, फासीवाद स्वतंत्रता को अधिकार न मानकर कर्तव्य मानते हैं। सर्वसत्तावादी दर्शन होने के कारण फासीवादी स्वतंत्रता को मानव जीवन के लिए स्वाभाविक न मानकर राज्य द्वारा दी गई एक विशाल रियासत मात्र मानता है और इस संबंध में हीगल तथा नीत्से की विचारधारा को स्वीकार करता है। उनका दृष्टिकोण है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की शक्ति पर निर्भर करती है और राज्य आंतरिक तथा बाहरी दृष्टि से जितना अधिक शक्तिशाली होगा व्यक्ति उतने ही अधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। व्यक्ति द्वारा अपने आप को राज्य के प्रति समर्पित किए जाने से व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी नहीं होती वरन उसमें वृद्धि ही होती है। मुसोलिनी ने इस सिद्धांत को इन शब्दों में व्यक्त किया, फासीवाद राज्य में व्यक्ति का निषेध नहीं हो जाता बल्कि वह अपने से कई गुना हो जाता है। जिस प्रकार एक सैनिक टुकड़ी का सिपाही न्यून नहीं हो जाता बल्कि अपने साथियों की संख्या के कारण एक से अनेक हो जाता है। स्वतंत्रता को कोई भी व्यक्ति राज्य के अधिकार के रूप में नहीं मान सकता। स्वतंत्रता राज्य की इच्छा पर निर्भर है। व्यक्तियों को तो जो कुछ भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह राज्य उनके सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर प्रदान करता है। मुसोलिनी के शब्दों में फासीवाद राज्य में व्यर्थ और हानिकारक स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है और केवल वे ही स्वतंत्रताएं रखी गई हैं जिनका रखना आवश्यक समझा गया है। स्वतंत्रता के क्षेत्र में व्यक्ति कभी भी निर्णायक नहीं हो सकता, केवल राज्य ही निर्णय कर सकता है। दसवां, फासीवाद फासी दल को राज्य की अंत चेतना मानता है। सर्वसत्तावादी धारणा होने के कारण फासीवाद स्वाभाविक रूप से एक ही राजनीतिक दल के अधिकृत में विश्वास करता है। दल राज्य का मुख्य अंग माना जाता है और दल को राज्य की सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त होता है। जेंटाइल के अनुसार दल राज्य की अंतः चेतना है। वर्तमान समय के साम्यवादी राज्यों की तरह ही इटली में फासी दल के अतिरिक्त अन्य किसी राजनीतिक दल का गठन नहीं किया जा सकता। दल की सदस्यता बहुत अधिक सीमित थी और दल के साधारण सदस्यों का एकमात्र कर्तव्य और अधिकार दल के नेता मुसोलिनी की आज्ञा का पालन करना था।